तफसीर तो हो गई, इसको सुनने के दौरान आपके जहन में क्या आया? चंद सवालात खुद से पूछें, क्या पर्दे, लिबास, हिजाब और वो जितनी बातें जिसका तذکرہ इधर हुआ, मुझे ये बात समझ आ गई है, नंबर एक। फिर दूसरा सवाल खुद से लिखिए, क्या आप मैं इसको मानने को तैयार हूँ? फिर अगला सवाल खुद से पूछिए, अगर मानने के लिए तैयार नहीं हूं तो मेरे उजर क्या हैं? फिर अगली बात, सूरत की पहली ही आयत सूरत ननजलनाह व फरदनाह, इसको पढ़ने के बाद भी क्या मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि ये अहकामात अल्लाह के नाजिल करदा नहीं है? इस तरह के सवालात करते जाएं तो आपको अपना असल पता चलेगा। होता यह है कि बाज़ दफ़ा जब कोई काम करना हमें वक्त और मुआशरे से मुख्तलिफ लगता है तो हमारा दिल उसको मानने को नहीं करता। पर्दे का हुक्म भी कुछ इसी किस्म का हुक्म है, जिसको दुख के साथ कहूँगी कि द मोस्टली रिजेक्टेड हुक्म है। कुछ लोग कहते हैं कि अभी तक बात समझ नहीं आई। चंद उज़र होते हैं लोगों के जहनों में पर्दे की बातों को सुनने के बाद। मसलन उसमें बहुत सारी चीज़ों के अंदर से एक उज़र जो भी आपके सवालात में से भी है, मैं चंद सवालात आपके साथ साथ ही लूँगी ताकि इस बात को अब हम मज़ीद अच्छे तरीके से समझ सकें। ये लिखती हैं कि उस्ताजा जी, अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि पर्दे का हुक्म डायरेक्ट कुरान में नहीं है, ये फ़र्ज़ नहीं बल्कि सुन्नत के दर्जे पर हैं, प्लीज़ इस पर रोशनी डालें। आप में से कोई इस सवाल का क्या जवाब देगा अगर उससे कोई कुछ पूछे तो? है किसी के पास इसका जवाब? जी आप बताइए। हज़रत आयशा की दलील कहती है, मैं दूंगी कि वो वहाँ रह गई थी और सुफान बिन मुअत्तल ने उनको पर्दे की आयतों से पहले देखा। ठीक है, एक दलील आपने दी। जी आप उमा।
जो भी कुरान की आयतें मुझे नहीं समझ आती थी, जो लोग कहते हैं इन्हीं आयात में भी मुझे तो क्लियर कट समझ आता है कि अल्लाह ने कहा कि जो कुछ जाहिर हो जाए उसको छोड़ दो। अगर हम डीपली इन आयात को पढ़ें तो मुझे तो कोई चीज उधर समझ नहीं आता है जो लोग ये बात।
जी आप चले, इनके पास ये भी दलील मौजूद है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला करती थी, लेकिन जो ये इतनी जुरत कर सकते हैं कि ये कुरान में नहीं है हदीस में, और जो हदीस में होने का मतलब भी सुनना था, ये कितनी मिसकंसेप्शन है। तो वो तो आपकी ये सारी बातें सुन के कह देंगे कि जी वो आयशा का अमल था, वो तो आयशा थी, वो तो नबी की बीवी थी, हमें कहाँ अल्लाह ने कह के पर्दा करो करो पर्दा, तो क्या जवाब देंगे? जी 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 आप बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? शाबाश, ये भी एक अच्छी बात है कि अगर ये पर्दे का मौजू ही नहीं था तो ये जो कल इतनी लंबी लिस्ट पड़ी, बाप भाई बेटे, उनके सामने क्या था? बाप को क्या दिखा सकते हैं और भाई के सामने क्या दिखा सकते हैं? क्या हम अपना सतर दिखाते हैं? भांजे भतीजे इनके सामने क्या कर सकते हैं? ये एक चेहरा ही तो है। और मुगीरा को अल्लाह के नबी ने क्यों कहा कि देखा? उसने कहा नहीं देखा। क्यों नहीं, कैसे नहीं देखा? रिश्ता डाल रहे हैं, उधर ही रहती थी ना, तो कैसे नहीं देखा था कि वो पर्दा करती थी? दलाइल तो इसके आगे जाके बहुत सारे आएंगे, इसको अभी थोड़ा सा बेशक पीछे कर दें क्योंकि ये आएगी। बात समझ लीजिए कि जब मानने को दिल ना चाहे तो ऐसे सवाल आते हैं। अगर सूरत अल बकरा की आयतें अगर आप खोलें और आप लोग देखिएगा कि बास लोगों का पर्दे के साथ बिल्कुल इसी किस्म का जुल्म है जैसा कि बनी इसराइल ने गाय का वाक्या था। जो लोग बाद में सुनेंगे तो उनके लिए बता देती हूँ कि सूरत बकरा की जो आयतें हैं, जिसकी बुनियाद पे गालिबन सूरत बकरा को सूरत बकरा कहा जाता है, अगर आप कुरान पाक में देखें तो आयत नंबर 67, इस काल मूसा लिकौमिहिन्नल्लाह यामुरुकुम अन तज़बहु बकरा, ये आयत अगर आप खोल सकें तो खोल लें, वैसे ज़ुबानी भी याद होती है मोस्टली लोगों को। आप देखिए कि गाय की तज़ीम इतनी ज़्यादा थी कि बनी इसराइल का दिल नहीं मान रहा था कि हम इसको ज़िबा करें। ऐसे ही था ना, क्योंकि वो सोचते थे कि जिसको हम माबूद बनाते हैं तुम उसको कहते हो ज़िबा कर दो। ठीक है, अब आप देखिए कि उनके ये जो चूँ चाँ के सवाल आते हैं ना, अल्लाह ताला ने कहा गाय ज़िबा कर दो, पहली बात कहा क़ाल अत्तख़िज़ूना हुज़ूआ। आज बहुत सारी बहनें और जो उनसे मुतलका भाई साहब भी हैं वो भी बाज़ दफ़ा जब उनको अल्लाह कहता है कि पर्दा करो कहते हैं अत्तख़िज़ूना हुज़ूआ, मजाक कर रहे हैं हमसे। आज के दौर में हम तंबू डाल के बैठ जाए, निकाब कर ले, पहली सारी दुनिया में बैन हो रहा है। आपको पता है कि आज बैन क्यों हो रहा है? क्योंकि हम करते नहीं हैं। आप करना शुरू करते हैं, वो किस किस से लड़ेंगे? एक अकेला, 2 11, नकार खाने में तोती की आवाज कौन सुनता है? तो बहुत सारे लोगों को मजाक लगता है। खैर, कहने वाला कहता है काल आउज़ु बिल्लाहि नकून मिनल जाहिलीन। वो कहता है मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं जाहिलों में से हो जाऊँ। अब जिनको नहीं मानना वो कहते हैं अच्छा काल उदलना रब्बक युबैन लना मा हिया, अच्छा अल्लाह से पूछो वो कैसा हो, बुरका हो, चादर हो, स्काफ हो, क्या हो, हमें समझ नहीं आ रहा। तो कहने वाला कहता है काल इन्ना यकुल इन्ना बकर तो ला फारिद ला बला बिक्र। कहने वाला कह देता है कि भाई बस मुनासिब हो, जिसम ढक जाए, जिसको देखकर एहसास हो कि आप एक अच्छी मोमिन औरत है, तरीके से बात हो। अब आन बीना जालिका, यानी ना तो बहुत गंदा खराब बदबूदार बाया और बाहर का आउटलेट रखो, और ना इतना चमकदार शोख रखो कि उसको देख कर लोग हैं, और देखो फफलू मा तुमरू, कर लो अब जो तुम्हें कहा जा रहा है। यानी डोंट आस्क टू मैनी क्वेश्चन अबाउट द पर्दा, हिजाब, निकाब, अबाया, इसके बारे में बहुत सारे सवाल करना ये ईमान के खिलाफ है। ये भी लिख लें, मैंने ये इतनी बड़ी बात क्यों कही? हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का एक कॉल है, अल्लाह के नबी से एक दिन कहती हैं हम मुहाजरात अपने घर छोड़ के मक्का से मदीना आई, हिजरत की, आपके साथ इतनी कुर्बानियां दी, लेकिन क्या बात है कि आप जब तारीफ करते हैं तो आप अंसारी खवातीन की करते हैं। अब देखिए ना, क्लैश आ जाता है ना, मैके और ससुराल का भी आ जाता है और अपने खानदान का भी आ जाता है। तो अल्लाह के नबी का जवाब सुनिए, आपने फरमाया कि आयशा मैं उन औरतों की तारीफ क्यों ना करूं कि जिनसे भड़कर अल्लाह के कलाम को सुनकर अमल करने वाला मैंने किसी को नहीं पाया। कैसे? कर रात को ईशा की नमाज में मर्दों ने पर्दे की आयात सुनी, 5 हिजरी में नाजिल हुई थी हजरत जैनब के वलीमे की, उसकी तरफ इशारा है कि उस वक्त जो आयात नाजिल हुई और रातों रात जब मर्दों ने घर जाके उन औरतों को बताया, जब अगले दिन फजर में वो औरतें आई तो मा मिन हुन इमरातुन इल्ला कामत मिर्तेहा, कोई एक औरत ऐसी नहीं थी जिसने रातों रात अपने घर की चादरों कपड़ों को ओढ़नियों में बदलकर सुबह उन्होंने अपने आप को ओढ़नियों में छुपा लिया। कोई एतराज नहीं, बाजार जाएंगे, रबी सेंटर जाएंगे, कपड़ा खरीदेंगे, दर्जी तो इतने नखरे करते हैं। आपने कहा कि रातों रात उन्होंने पर्दे पे अमल किया, अगले दिन फजर की नमाज में वो अबाए पहन के आई हुई थी और चादरें थी, गोया के कान नाला रूस हिन्न गिरबाब, गोया के उनके सरों पर काले कव्वे बैठे हुए। तो याद रखिए कि बातों से तो कुछ भी नहीं होता, बातें तो सिर्फ बातें ही होती हैं, बात सुन के माननी होती है। वो ये नहीं कहते और बताओ और पूछो और बातें करते हैं। खैर, वो कहता कालू दलना रब्बा का युबैन लना मा लौनुहा, अच्छा अपने रब से पूछ के बताओ कि उसका रंग क्या हो। अब आया काले ही पहन सकते हैं, सिल्वर पहन ले, गोल्डन पहन ले, शॉकिंग पिंक पहन ले, कैसा पहन ले, ये भी किस सोच की गम्माजी कर रहा है कि मानने को दिल नहीं कर रहा। तो कहा कि अपने रब से कह दो कि हमें जरा मजीद बता दे कि उसका रंग कैसा हो। काल इन्ना यकुल इन्ना बकरतुन सफरान, कब बस एक हल्का सा सफरा को अब लगा से धीमा रंग, कैसे कोई भी कर लो, हल्का पहन लो, गहरा पहन लो, कोई हरज की बात नहीं है। हाँ फाकिर लोन है तसरुन नाजरीन, कोई ऐसा चमकता रंग ना हो कि जो दूसरों को बहुत लुभाए। तो कहते हैं कालुदलना रब्बा का युबैलना माहिया, अच्छा बता उसकी शेप कैसी हो, अच्छा अम्ब्रेला कट पहन सकते हैं, नीचे से खुला पहन सकते हैं, ऊपर से खुला पहन सकते हैं, टाइट पहन सकते हैं। इन्नल बकरा तशाबह अलैना, हमें तो इस पर्दे यानी गाय पे शुबा ही पड़ गया। क्या आज के दौर में पर्दा गाय नहीं बन गई? समझ ही नहीं आ रही, खरीद ही नहीं पा रहे। हाँ ही भाई इन्ना इंशाअल्लाह मुख्तदून, इतने सवाल करने के बाद कहते हैं कि अच्छा चलो कोशिश कर लेते हैं, आई विल ट्राई माई बेस्ट। और वो माई बेस्ट नहीं होती, सिर्फ ट्राई होती है और आधी होती है और उसके बाद हम छोड़ देते हैं। याद रखिए ये क्वेश्चनिंग माइंड जो होता है ये मोमिन का नहीं होता, बल्कि एक सबक छोड़ के अगले सबक के पहली आयत में हम पढ़ेंगे इन नमकान कौलुल मोमिनीन, ईमान वालों का तो कौल बस यही होता है कि जब वो अल्लाह की कोई बात सुनते हैं तो कहते हैं समेना वाताना। देखिए जो सवाल होते हैं ना आपके चेहरे का पर्दा, तो मैं अक्सर ये जुमला बड़े शौर से बोलती हूँ, आज फिर आपके लिए बोल देती हूँ, चेहरे का पर्दा उसको समझ आता है जो हिजाब मुकम्मल तकाजों के साथ पूरा कर चुका हो, और हिजाब उसका ठीक होता है जिसका ड्रेस कोड ठीक हो चुका हो, और ड्रेस कोड उसका ठीक होता है जिसके अंदर हया आ चुकी हो। बच्चे को मैट्रिक का सवाल समझ नहीं आएगा ना, या मैट्रिक वाले को मास्टर्स का सवाल नहीं समझ आएगा ना, चेहरे का पर्दा तो समझ ही नहीं आएगा। अभी तो हम सिर्फ ये परेशान हो रहे हैं स्काफ और हिजाब कैसे हो, अबाए कैसे हो, और ये पहने के ना पहने। अच्छा जी, सहाबियात नहीं पहनती थी, पहनती थी, कैसी पहनती थी, क्या करती थी, जो कुछ वो करती थी ना। मैं यकीन से कहने लगी हूँ बीबी बात, कि जो कुछ वो पहन के, जो उनके आउटलेट थे, अगर आज हम भी उस रुख में बाहर निकल आए तो हो सकता हम पे भी आसानियाँ हो जाए। हमारे तरफ एक्सपोजर के साथ नहीं आती थी। आज भी वो लोग देखिए जो अब आए के साथ हिजाब ही को पर्दा कहते हैं, वो फुल मेकअप में हिजाब के साथ बाहर होते हैं। उनके अबाए खूबसूरत, डेलिकेटेड, उन पे खुशबुएं लगी हुई, नीचे इतनी ऊंची हील की जूती होती है। अगर तो वो एक स्टेप में, एक वो थ्रेश होल्ड में से निकल रहे हैं अपने प्रेशर की, और जिस सर्कल में वो थी, बड़े लोगों की बेगमात के साथ बैठती थी, इट्स वेरी गुड। उनको इम्प्रेस करने के लिए आप खूब अच्छे नाइस अबाए पहन ले कुछ दिन, ताकि उनको भी बहुत ही आप इचिंग ना फील हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह वो सेटल डाउन हो जाएगी। लेकिन ये कहना, देखिए एक और जुमला जो आप बोलूंगी ना, इसको शौर से समझिए, ये कहना कि अभी मैं नहीं कर रही ये और बात है, और ये कहना कि ये दीन ही नहीं है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। मैं नहीं कर रही, मैं आजजी है कि मेरे लिए दुआ करे, अल्लाह तो मेरे लिए आसानी कर दे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना। और ये कहना कि ये दीन ही नहीं है, ये अल्लाह पे झूठ है। वमन अज़लमु मिम्मन कज़ब अला अल्लाही कज़िबा, जो अल्लाह पे झूठ बोलता है फिर उससे बड़ा जालिम कौन होगा। तो आप अल्लाह ताला से दलाइल ना मांगे, तौफीक मांगे। और यकीन करें, अगर आप और मैं जितने लोग इस जगह बैठ के एज अ स्टूडेंट सुन रहे हैं ना, अगर हम इस हुक्म पे अमल कर लें तो हमारे इस माशरे में चेंज आएगी। मैंने जिक्र किया था पीछे भी कि जब तक सेग्रीगेटेड माहौल नहीं बनता, पर्दा पूरी तरह नाफिज नहीं होता, आज हमें मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि हमारे सारे माहौल के अंदर ये फिट ही नहीं हो पा रहा। फिट कब होगा? जब औरतों को उनके पहनने ओढ़ने का हक अलग से मिलेगा, उनके बैठने की जगह अलग होंगी, वो बाहर से जिस रंग रूप में भी आएंगी, जब अंदर आ गई तो उनको पता है कि जाहिर है, देखिए जब अल्लाह ने पहनने ओढ़ने को कहा है, आप आराइश करते हैं, आप मेकअप करते हैं, आप बाल बनवाते हैं, तो आपका दिल भी तो चाहता है ना कि हम अच्छे लगे। तो अब उसके लिए अगर आपको शादी हॉल में जाकर फिर अबाया ही पहन के बैठना है, तो आप कहेंगे कि या तो अबाया उतार दो या फिर शादियों में जाना छोड़ दो। तो इसके लिए हमें कंपेन करनी, और वो कौन चलाएगा कंपेन और उस पर अमल कौन करेगा? यहां से लेके वहां तक के लोग करेंगे, आप और मैं करेंगे। आज से चंद नियतें करें, हमेशा याद रखें अपनी जात से शुरू करें, कि जब भी अपने घर के अंदर से शुरू करेंगे ना पर्दा, घर के अंदर का पर्दा क्या है, क्योंकि घर में हम बुरके तो नहीं पहन के फिरते, चादरे भी नहीं पहनते। नंबर एक, जब मेरे घर में कोई गेस्ट आएंगे, कपल्स आते हैं, फैमिलीज आती हैं, हस्बैंड के दोस्त आते हैं, उनकी वाइफ आती हैं, मैं उनके बैठने का इंतजाम अलग रखूंगी। कल एक ऐसी जगह हम इनवाइटेड थे, किसी आपके ही काम के साथ गए हुए थे, तो वो जो बुलाने वाले थे वो ये सोच रहे थे कि हम एक ही ड्राइंग रूम में वो कपल, हस्बैंड वाइफ, हम लोग भी और जो भी हमारे साथ हैं वो बैठ जाएंगे। अब मुरव्वत के मारे जब उन्होंने कहा कि आइए ड्राइंग रूम में बैठ जाए, तो हम भी जा सकते थे, होना क्या था भला, आप मुझे बताएं। हम एक जगह बैठते, अब जाहिर आपको होता है यहाँ ड्राइंग रूम कितने को बड़े होते हैं, किसी ना किसी हद तक तो हम उनके सामने एक्सपोज होते हैं। फिर दूसरी बात है कि हमें जो हम निकाब करते थे, पूरा वक्त निकाब में रहना पड़ता, हो सकता है जो हमारी होस्ट थी वो निकाब ना करती, तो वो इससे इरीटेट फील करती कि वो हमारे मर्दों के सामने बगैर निकाब के। फिर उसके बाद हम कितना को खुल के बात कर सकते थे उनसे, जिस बात के लिए हम गए थे, भाई इतनी मुसीबतों की जरूरत क्या। और जब भी हम कहीं जाते हैं, कोई माने ना माने, हम कुछ ना कुछ कंघी करके साफ सुथरे कपड़े पहन के जाते हैं, और जाना चाहिए। ये इस्लाम की भी इज्जत है, ये घर वाले की भी इज्जत होती है। इस्लाम की इज्जत ऐसा है कि इस्लाम रोकता नहीं है, तुम्हारे पास अच्छी चीजें, अच्छे कपड़े हैं, अच्छी ज्वेलरी पहनो, ली क्यों है, या ली नहीं है तो मिल गई है तो उसको इस्तेमाल करो या दे दो। और दूसरी बात है कि जब पहनना ओढ़ा है तो आप कहेंगे हाय हाय, क्या भाई के अंदर कपड़े भी पहने हुए हैं और फैसे, सिंपल सी बात है। अच्छा इधर हाँ बैठे, हम ऐसा करते आगे चलते। उनको थोड़ी सी अजीब लगा, अच्छा हम साथ नहीं बैठेंगे। मैंने कहा भी शुरू में बैठते हैं फिर देखते हैं क्या होता है, आराम से सुकून से। और मजे की बात ये हुई कि वो जहां बैठे उससे वो दूसरी जगह इतनी दूर नहीं थी, लेकिन बीच में आड़ थी, काम भी हो गया, दिल चाहा तो आपने स्काफ भी उतार दिया, आप चाहते तो बाया भी उतार देते। हमने औरतों में आपस में अच्छी तरह बात भी कर ली, मर्दों में मर्दों की होगी, खाना जी चाय पीनी है चाय कैसे लगाएं। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, आप है जो भी चाहे, मुझे अपने हस्बैंड का पता है कि उनको मैं प्लेट बना के भेज सकती हूँ तो वो खुशी से खा लेते हैं। अच्छा मैंने कहा आप अपने हस्बैंड की बना ले, मैं अपने हस्बैंड की बनाती हूँ। सुकून से उनको भी ट्रे बना के दे दी, उनको दी, क्या हमने इंजॉय नहीं किया, मजा भी आया, बात भी हुई, इंजॉय भी किया। और औरतों में बैठ के जो एक बेतकल्फी होती है, मैं कभी भी ना उनसे इतनी बातें पूछती अगर मैं उनके हस्बैंड के साथ बैठी होती, आवाज ही नहीं खुलती, दिल नहीं करता। सुकून से हो गया, मजा आ गया, ये मेरा हक था ना, हम मेहमान थे और कोई काम रुका उसकी वजह से। बाद में उन्होंने थोड़ा सा इशारा किया कि शायद हम अपना मैसेज पूरी तरह कन्वे नहीं कर सके, क्योंकि नॉर्मली हम जब ऐसी बातें करते हैं तो सब, मैं भी बोलती हूँ, मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं। मैंने कहा सिस्टर यकीन करें कि औरतें औरतों को ज़्यादा अच्छा कन्विंस करती हैं मर्द मर्दों को। आपकी बात मैंने 100% समझ ली और मुझे यकीन है कि आपके हस्बैंड ने भी बहुत अच्छी तरह समझा दी होगी बात। तो आई थिंक बल्कि अच्छा है कि बाद में हम दोनों भी बात करें, हम सब भी करें और आप भी करें, तो बात बहुत अच्छी कन्वे होगी। अब ये एक स्टेप लिया, ये आपके लिए ये मुश्किल है। अब इसको प्रैक्टिकल, यहाँ क्लासरूम में तो बहुत आसान है, मर्दा रहा मर्दा रहा, पर्दा कर लो कर लो कर लो। यहाँ तो हम बात जब बहुत ही बेचैन भी हो सकते हैं ना, कोई एक मर्द आ जाए, आप इसको अपने घर पे लाएं। और याद रखिए, जब तक इसको बड़े से छोटी पिक्चर में नहीं देखेंगे, मसलन अमूमन आपके घर में कौन आते हैं? अमूमन सबसे ज्यादा हमारी फैमिली के लोग आते हैं, आपकी नंद और उनके मियाँ आएंगे, आपके देवर आपकी देवरानी आ जाएंगी और सो ऑन, यही आते हैं ना। अगर आपके यहाँ रिलेटिव्स हैं और जिनका खानदान इधर है, उनके लिए ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि सम टाइम हम जो बाहर के मर्द हैं, शहरों के दोस्त या कोई मिलने वाले क्लाइंट्स वगैरह, उनको मलग ही बिठाते हैं, और अपने हो तो कहते हैं भैया तुम अंदर ही आ जाओ, भाभी किधर हो, क्या पकाया है, बड़ी खुशबू आ रही है, ढक्कन खोला हो, बोटी खाई हो, ये कर कर आके चले गए, बड़े खुश हैं, भाभी माँ बराबर होती है, और साली आधे घर वाली, नऊजु बिल्लाह मिन ज़ालिक। इससे स्टेप लीजिए। देखिए ये बातें, मैं अब इस साल तो मेरा दिल करता है मैं कोई बहुत बड़े बड़ी बातें करने के बजाय कुछ स्टेप्स ले लूं, क्योंकि पता नहीं हमारे पास वक्त अब कितना है। आप सब अगर इस जुर्रत का इजहार करें, और आपके हस्बैंड क्या कहेंगे कि तुम अलग क्यों बैठी हो, उनको अलग क्यों बिठाया है? कोई बात नहीं, आप यकीन करें कोई भी मर्द जितना भी क्या गुजरा हो, वो ये नहीं पसंद करता कि उसकी बीवी को दूसरे मर्द देखें। ये जो बाहर लेके जाते हैं पार्टियों में और मिक्स गैदरिंग में, असल में उन्होंने भी तो दूसरों को देखना होता है ना, इसलिए बर्दाश्त कर लेता है कि चलो मेरी बीवी भी तो साथ होगी, अकेले तो मुझे कोई जाने भी नहीं देगा। इस तरह के स्टेप्स ले अपने घर का हर फंक्शन, इसमें दावतें हैं, शादी की दावत है या ईद आ जाएगी तो उसकी दावत है, फैमिली गेट टुगेदर है, कोई हज पे आप आए हैं तो आपने अपने घर में लोगों को बुलाया, इट्स क्वाइट ईजी। और इसमें फायदा क्या होगा, जब नेक्स्ट टाइम आपके घर पार्टी होगी तो वो सारी सिस्टर जो बेचारी हिजाब में हर वक्त बैठी रहती थी अबाय में, वो ज्यादा खुश होंगी। बड़ी चादरें रखें, ऐसा कभी मौका हो, बल्कि जब मैं कल गई तो मुझे पता नहीं था हमारे साथ क्या हालात होंगे, तो ये जो आम स्काफ मैं ऊपर सर पे लेती हूँ इस निकाब के साथ, कल मैंने इसकी जगह बड़ी चादर एक काली है मेरे पास, वो ली, अबाया पहना, फिर बड़ी चादर ले ली, फिर ऊपर निकाब किया, इस सोच के तहत कि जैसे भी हालात होंगे कम अज कम बड़ी चादर के साथ बंदा घूंघट निकाल सकता है, अपने आप को छुपा सकता है, ये सिलावा निकाब है, इसमें मुंह पूरा खोल के आता है। मैं पूरे इंतजाम से गई थी। अब जब आपके घरों में ऐसे लोग हैं कि जहाँ थोड़ा बहुत इंट्रैक्शन कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो फिर आप उस वक्त बड़ी चादरें ले सकते हैं, कॉटन की चादरें होती हैं, प्रिंटेड चादरें होती हैं। तो इस तरह से, इस तरह के काम जो होते हैं ना, इसके बारे में आपको स्टेप लेना पड़ेगा। आप कंफर्टेबल हैं, आप ना घबराएं, आप ना परेशान हो, खाना इकट्ठा रख दें, और उस वक्त सर्विंग जब करें तो आधी सर्विंग उधर कर दें, वो ले लें, ज्यादा से ज्यादा आपको खाना थोड़ा ज्यादा बनाना पड़ेगा, या मर्द पहले खा लें या औरतें पहले खा लें। और सच बताएं, आज से 20-25 साल पहले क्या ये नहीं होता था हमारे घरों में? मुझे आज भी याद है, जैसे ये बच्चियों की उम्रें इस वक्त जो फिर रही हैं, इस उम्र में जब हम लोग होते थे, दावतें तब भी पकती थी, यही होता था, पहले मर्द खाएंगे, मर्द खा के चले जाएंगे, फिर उसके बाद दोबारा डिशें आती थी अंदर, उनको थोड़ा सा गर्म करते, कई दफा बर्तन भी इतने नहीं होते थे, वही बर्तन धुलते थे, फिर सब घर की औरतें और मेहमान बैठ के खाते थे। क्या मुश्किल है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जितना इस काम को आसान करें, और सबसे बड़ी बात है, वी डोंट हैव एनी चॉइस। आप चेहरे के पर्दे को भी इस वक्त भूल जाए, मेरी बात सिर्फ जो मैं बहुत ही बेसिक बात करती हूँ कि जिस एक्सपोजर में हम होते हैं, दावतों में, शादियों में या मेहमानों के आने पे, इस पे तो चारों इमामों में से कोई एक भी नहीं कहता कि आप चेहरा खोल सकते हैं। आपको पता है कि ये फतवा है मौजूद इल्लामा ज़हरा मिन्हा के अंदर के चेहरा खोल सकते हैं, लेकिन उसकी शरायत है, चेहरे पे कोई क्रीम नहीं लगी हुई, कोई खुशबू नहीं, कोई जेवर नहीं, कुछ नहीं, स्पॉट वाइट चेहरा, जैसे आपका मुंह धो के आप निकले उस तरह के चेहरे के साथ आप जाते हैं, तो वो कहते हैं इस सूरत में चेहरा खोल सकते हैं। तो जो हमारे चेहरे जिस सूरत में शादियों में और पीसीस में और मेरियट के हॉल्स में हम लोग जाते हैं, हिजाब भी किए होते हैं ऊपर, इसकी तो मेरा नहीं ख्याल किसी एक मसलक ने भी कभी इजाजत दी हो। मैंने ये देखा है कि जिस घर में एक दफा एक औरत पर्दा कर लेती है ना, 2-4 साल के अंदर घर की बेटियां, घर की बहुएं भी पर्दा कर लेती हैं, यकीन कीजिए। और इतनी सहूलत, ज्यादा से ज्यादा इससे जो आपको एक फील होगा ना, वो ये होगा कि बेकार मसरूफियां छट जाती हैं। हर वक्त जो लाइन डोरी लगी रहती थी ना, भाभी आ गए और भाई आ गए और चाय बनाओ, और वो कम हो जाती है। ऐसे लोग फिर थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, या आपको कोई बुलाना कम करे, कुछ भी कम नहीं होता। मैं ऐसे ऐसे खानदानों को अल्लाह की तौफीक से जानती हूँ कि बिल्कुल फुल एक्सपोजर के साथ, और खानदान भी इतना बड़ा कि अल्लाह ताला की बरकत है उसमें। लेकिन एक औरत ने जब पर्दा शुरू किया, बहुत बड़ा स्टेप था, कभी सोच भी नहीं सकते थे। आज उस खानदान की, यानी खानदान से मेरा एक फैमिली नहीं कि एक मियाँ बीवी बच्चे, नहीं भाइयों के बच्चे, चार भाई हैं तो उनकी बेटियां बीवियां, मेरा नहीं ख्याल कि अब सारे खानदान में एक आधी को लड़की है जो नहीं करती होगी, और वो भी करती है तो हिजाब और अबाया तो पहनती है, लेकिन सब पर्दा करने लग गई है। और ऐसे ऐसे एक एक करके मर्दों के चेहरे पे दाढ़ी आ गई। ये भी बात याद रखे, जब औरतें सही निकाब और पर्दा करती हैं ना, तो मर्द दाढ़ी रख लेते हैं। वो कहते हैं अब क्या करना, ये बेगम ही है ना देखने वाली, तो इसको दाढ़ी के साथ ही दिखाओ। याद रखिए कि जो मजबूर होते हैं वो तो ये भी कहते हैं हाय मजबूर हैं, शेक हैंड करना पड़ेगा, मजबूर हैं ये करना है। आप कितना को मजबूर होंगे। एक उजर मैंने जो अक्सर लोगों के मुंह से सुना है जब उनको ऐसी बातें करे, वो कहते हैं नो आई एम नॉट कन्विंस्ड येट, कन्विंस्ड नहीं हूं मैं, अभी मेरा दिल नहीं मायल हुआ। तो सहाबा कराम ने नबी सल्लम से जो बैत की थी ना अकबा के मौके पे, उसमें से एक क्या थी, जब मदीना लोगों ने कहा कि आप हमारे साथ चले, तो आपने कहा कि नहीं ऐसे नहीं लेके जाऊंगा, मुझे ले जाने के बहुत सारे तकाजे हैं, उसके बाद बहुत कुछ होगा। तो आपने एक शर्त रखी थी, क्या तुम इस बात पे बैत करते हो कि कोई बात जो तुम्हें मैं कहूँ या अल्लाह का हुक्म है, तुम मानना चाहो ना मानना चाहो, तुम्हें उसकी समझ आए ना आए, तुम उस पर अमल करोगे। तो साहबा ने कहा था कि हम समा बसर का हुक्म लेते हैं कि आपकी हर बात को मानेंगे चाहे हमें समझ आए कि ना आए। बात वजह मैं नहीं कन्विंस कहूंगी तो क्या हुक्म बदल जाएगा? आप रेड लाइट पे ना खड़े हो, आप कहते हैं मैं कन्विंस्ड नहीं हूं कि रेड लाइट पे खड़े होना चाहिए, तो क्या कानून बदल जाएगा? ये मालिक का कानून है, अपने घर की खिड़की से खड़े होकर जरा आसमान की तरफ नजर डाले और नीचे देखे और इधर देखे और उधर देखे, तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी जात का हुक्म है। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे लिए इसको आसान कर दे। बेपर्द होकर इंसान खूबसूरत नहीं लगता, और बहुत ज्यादा नकाबी होकर वो बदसूरत नहीं लगता। ऐसे ऐसे कमेंट्स मर्दों के मौजूद हैं कि जिनको निकाब से पर्दे से मोहब्बत है, वो कहते हैं मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत ही तुम अपने निकाब में लगती हो, क्योंकि तुम मुस्लिम औरत हो, मुझे खुशी होती है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूथ में कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो बोल्ड है। आज भी माँ पर्दा नहीं करती, बेटी करती है। आज भी बाप की दाढ़ी नहीं है, बच्चे की दाढ़ी है। इधर से आप जी
सर जी, ये सिर्फ हमारा अपना औरतों का जहन है, इवन अगर हस्बैंड भी इस चीज में ना साथ दे रहे हो, जब हम सोच लेते हैं ना कि इंशाल्लाह ताला हमें अपने ऊपर अप्लाई करना है, वो भी अगर किसी भी किस्म के पहले शुरू में नहीं साथ देते हैं ना, तो अल्लाह के हुक्म से वो इस चीज को बहुत अंदर से वो फील करते हैं कि मेरी औरत ने मेरी बीवी ने कुछ अच्छा।
जी आप देखिए कि क्या हस्बैंड हमारा हर चीज में साथ देते, आप कोई चीज खरीदना चाहती हैं, शॉपिंग करना चाहती हैं, हस्बैंड फौरन कहते हैं ले लो, ऐसा ऐसा हम कायल कर ही लेते हैं ना, उनको कहीं जाना है करते हैं ना। और दूसरी बात है कि इस चीज को बहुत अनाउंस करने की जरूरत नहीं। मसला पता कहाँ होता है? अनाउंस, बस मैं पर्दा कर रही हूँ, बस मैं अपनी नंद के बेटों से पर्दा कर रही हूँ, मैं देवरों के बेटों से पर्दा कर रही हूँ, देवरों से पर्दा। भाई आप क्यों लोगों को इतनी गोलियां चला के हरासा करें, कर लीजिए। अब होता क्या, मिसाल है कि जैसे आपके नंद के बच्चे जो हैं वो आप उनकी मुमानी है, वो आपसे बहुत मोहब्बत भी करते हैं, बेतकल्लुफ है। बाद जब हमारे कल्चर में आते हैं सारा आगे कर देते हैं, प्यार दो, बूढ़ों से भी लोग प्यार ले लेते हैं और अपने से छोटों को भी प्यार दे देते हैं। देखिए इस्लाम में पर्दे का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो उम्र के साथ नहीं है। आपके मैं अपनी उम्र के छोटे बच्चे से पर्दा क्या करूं, या इससे मैं हाथ फेर लूं, ये मेरे बेटे के बराबर है, कतन नहीं। आपके बेटों के दोस्त आपके बेटे नहीं हो सकते, आपके कजन्स के बच्चे आपके नहीं हो सकते। इसी तरह अपनी उम्र से बड़े 40-50-60 साल, और हमारे बुजुर्ग तो फिर खूब प्यार देते हैं यूं, वो तो अलग बात है कि लड़कियों के सरों के बाल ही खराब हो जाए, अब्बा जी मेरे हेयर स्टाइल तो खराब ना करें, तो प्यार दे देते हैं। तो टच करना तो और बड़ी बात है ना। असल बात यह है कि आपको पर्दे की हिकमत समझ आ जाए। जो बात आपको कल एंड पे बताई थी कि चादर और चार दीवारी जो है ये हिफाजत है, आप कहते हैं हमें सजा दी है, और आप कहते हैं कि आई एम प्रीशियस। किस चीज की आप हिफाजत करते हैं? कोई चीज खरीदते हैं तो कौन सी चीज पैक होती है? सील टूटी हो तो इसको ना लो, क्योंकि ये हो सकता है यूज्ड हो, इसमें जरासीम चले गए हो, तो पर्दा औरत की सील है, ये प्रोटेक्शन है। आप जिस एंगल से इसको लेंगे, अल्लाह ताला आपके लिए वैसे ही आसान कर देगा।